हमारे अपने हाथों की कमाई है जो हमारे सामने आ रही है। सो क्या है कि बाज लोग होते हैं जो हर नेगेटिव चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ब्लेम गेम करते हैं, अपनी जात को देखते ही नहीं है, अपनी गलती को देखते ही नहीं है। और दूसरी कैटेगरी होती है जो जहां कोई चीज गलत होती है वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि शायद मेरे कहने में कमी थी, शायद मेरे अमल की कमी थी, शायद मेरे खुलूस की कमी थी, शायद मेरे अल्लाह पर तवक्कुल की कमी थी। ये वो लोग होते हैं जो खास लोग होते हैं, और ये क्वालिटी रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर लोगों के लिए सिंपथी से बढ़कर एम्पथी होती है। ये वो लोग होते हैं जिनमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपने अंदर ये खूबी कि किसी काम के नामुकम्मल होने पर या गलत होने पर या वैसा रिजल्ट सामने ना आने पर पहला रिएक्शन होता था अपने आप को ब्लेम करना। इसीलिए सूरह कहफ की आयत नंबर 6 में आता है, अल्लाह ताला ने मना फरमाया आपको, आपकी इसी चीज को आप अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया, फला अल्लाह का बाकी उन नफ्सा का अला आसारे, उनकी बेअमली की वजह से आप लिटरली अपने आप को जिबा कर लेंगे। अगर ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप तो अपने आप को ब्लेम कर करके गमजदा कर लेंगे। यही एंगल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहां पर था कि कहीं अक्सरियत के बात ना मानने की वजह से आउट ऑफ ग्रीफ आप अपने आप को ब्लेम ना करने लगे। तो अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया आपके बताने में कमी नहीं है, ये हक को पहचान कर भी हक की तरफ नहीं आएंगे इसलिए कि इन्होंने अपने ऊपर गफलत को तारी किया हुआ है। लेकिन ये अल्लाह का कहना था रसूल अल्लाह को, टेक इट इजी, रसूल अल्लाह की नेचर थी ना, लिन ताला हूं, नरमी थी आपकी तबीयत में, आप फिर भी अपनी कमी महसूस करते थे। क्या दुआ की थी आपने, अगर आप लोगों में से किसी ने वो दुआ पढ़ी हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मौके पर की थी, जब ताइफ के लोगों ने आपके पैगाम को, जो कि आपने बहुत मोहब्बत से दावत दी थी तौहीद की, ना सिर्फ आपके पैगाम का इनकार किया, आपको पत्थर मारकर अपने इलाके से बाहर निकाला था, और इतने पत्थर मारे थे, बच्चे जवान बूढ़े सब ने पत्थर उठा उठा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारे थे, इतने मारे थे कि आपके जो स्लिपर्स थे उसमें खून भर गया था, इतने पत्थर आपको मारे थे। उसके ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की एम्पथी नजर आती है जो आपने दुआ की। दुआ तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको शुरू के अल्फाज बताती हूँ, अल्लाहुमा इलैका अश्कु दाफा कुवती, अल्लाह मैं अपनी कमजोरी की कंप्लेंट आपसे करता हूं, लोगों की शिकायत नहीं कर रहे, अपनी कमजोरी की। वकिल्लत हीलती, अल्लाह मैं अपनी मेहनत की कमी की कंप्लेंट आपसे करता हूँ, शायद मैंने पैगाम पहुंचाने में वो मेहनत नहीं की। वहवानी अलन्नास, अल्लाह मैं आपसे कंप्लेंट करता हूँ कि जो रिस्पेक्ट लोगों को आपके पैगाम बताने वाले को देनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी। ये आपकी तबीयत की नरमी थी कि आपने कोई कर्स नहीं किया ताइफ वालों को, कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई बुरा भला नहीं कहा, अपनी कमी को मेंशन किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अल्लाह के बंदों के जुल्म का कोई जिक्र नहीं किया। ये थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ऐसे रसूल को अल्लाह ताला ने कंसोल किया ये कहकर कि देखें अक्सरियत मान जाएगी, इकरार नहीं करेगी, सो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। अब आगे आपको जो आयत मिलेगी ये आयत कुरैश के लोगों के ऊपर भी अप्लाई करती है और तमाम उन इंसानों पर अप्लाई करती हैं। आगे की तीन आयात जो आ रही हैं, आयत नंबर 8, 9 और 10, ये तीनों आयात उन तमाम लोगों पर अप्लाई करती हैं जो हक को नजर हक को देखने के बावजूद हक पर अमल करना नहीं शुरू करते, जो क्लासेस अटेंड करने के बावजूद अमल में आगे नहीं दौड़ पाते, जो डिली डैली करते रहते हैं, जो डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल करते रहते हैं, जो इस इंतजार में रहते हैं कि अच्छा बस ये दुनिया के काम कर लूं फिर अल्लाह की बात मानूंगी, बस कॉलेज खत्म हो जाए फिर अल्लाह की बात मानूंगी, बस शादी हो जाए फिर अल्लाह की बात मानूंगी, बस बच्चे हो जाएं फिर अल्लाह की बात मानूंगी, बस बच्चे बड़े हो जाएं फिर अल्लाह की बात मानूंगी, बस बच्चों की शादियां हो जाएं फिर अल्लाह की बात मानूंगी, बस बच्चों के बच्चे हो जाएं फिर अल्लाह की बात मानूंगी, और ये करते करते इंसान डेथ बेड पर पहुंच जाता है। और इंसान जो सारी जिंदगी करता है 99% उसको अपने डेथ बेड पर भी उसी की फिक्र रहती है। ज्यादातर लोगों को मरते हुए औलाद को ये वसीयत देना याद नहीं रहती कि बच्चे मेरे बाद अल्लाह की बंदगी करना, मेरे बच्चे मेरे बाद अल्लाह की नाफरमानी मत करना, यह मेरे लिए अजाब जारिया बन जाएगा। हमें फिक्र क्या होती है डेथ बेड पर, मेरे वो वाले शेयर्स उस बेटी के, वो वाला प्लॉट उस बेटे का, वो वाली फैक्ट्री उसको दे देना, और मेरे उस बैंक में जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल के ये कर ले। मरते हुए इंसान ये बातें कर रहे होते हैं। कितने हम में से अपनी औलादों के लिए वसीयत लिखे हुए हैं अभी भी, कोई हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डेथ बेड पर नहीं है, लेकिन अकलमंद मुसलमान अपनी वसीयत लिख कर रखता है, कहता रहता है, लिख कर भी रख दीजिए अपनी वसीयत, मरने के बाद आपकी अलमारी में से आपकी औलाद को मिलेगी तो कोई नसीहत उनको उस वक्त पढ़ने का मौका मिल जाएगा। हमें नहीं मालूम हमारी मौत कैसे आती है, मौत के वक्त हमें औलाद को चार जुमले बोलने की तौफीक भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दुआ क्या करें, अल्लाह ईमान पर खात्मा करे और कलमे पर खात्मा करे। लिख कर रखिए अपनी औलाद के लिए कि मेरा जनाजा, मेरी तदफीन और मेरे मरने के बाद के अहकामात के जो भी मामलात हैं वो सब सुन्नत के मुताबिक किया जाए। लिख कर रखिए कि मेरी औलाद मेरे मरने के बाद अल्लाह की फरमा बरदार रहे। आपके अपने हाथों से लिखे हुए अल्फाज क़यामत के दिन इंशाल्लाह आपके लिए गवाह बनेंगे और आपके औलाद के दिल पर भी उसका असर जरूर होगा। मौत तो वैसे ही दिल नरम कर देती है, कहाँ के माँ बाप का चले जाना इंसान को हिला देता है, चाहे किसी उम्र में भी वालिदैन जाएं, और माँ बाप के जाने के बाद उनके हाथ से लिखी हुई कोई चीज मिल जाए सो आप समझ लें कि कितना बड़ा वो खजाना आपको उस वक्त लगती है। सो अच्छी नसीहतें अपनी औलाद को करके जाइए। आगे जो आयत नंबर 8, 9 और 10 में सजा आ रही है, वो सजा उन लोगों की है जिन्होंने हक को पहचान जाने के बावजूद हक को इग्नोर किया। सूरत यासीन आयत नंबर 8, इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन फहिया इलल अज़्कानी फहुम मुक़महून। हमने यकीनन बना दिया, हमने उनकी गर्दनों के अंदर उनकी चिन्स तक शैकल्स डाल दिए हैं, टॉक डाल दिए हैं, वो हिल नहीं सकते, दे कांट मूव, फहुम मुक़महून, और एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ कर खड़े हुए हैं। ये जो पिक्चर यहाँ पर आई है, आनाकिहिम जमा है उनुक के, आइन नून काफ, उनुक गर्दन को कहते हैं अरबी जुबान में, उनुक गर्दन वाहिद सिंगुलर, इसकी जमा आती है अनाक, अजकान रुकन की जमा है, रुकन दाल काफ नून चिन को कहते हैं थोड़ी, और जो यहां पर आया है अगलालन, ये गुल की जमा है, गुल कॉलर्स के लिए आता है, कॉलर बोन आपने देखी नहीं, जो आपकी कॉलर बोन होती है इसकी सपोर्ट के लिए या आपकी स्पाइन की सपोर्ट के लिए आपको कभी कभी कॉलर पहना दी जाती है। सो कोई भी टॉक, कोई भी शैकल ऐसा, कोई भी ऐसा कॉलर जो आपकी गर्दन में पहना दिया जाए, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकेशन ये होती है कि गर्दन में ऐसे पहनाया जाए कि आपकी चिन ऊपर रहे। जब आप कॉलर पहन लेते हैं तो आपकी चिन थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, अरबी जुबान में उसको गुल कहते हैं, उसकी जमा यहां पर अगलालन आई है। ये जो यहां पर अल्लाह ताला ने एक इमेजरी दी है कि उनकी गर्दनों में मेटल कॉलर्स हैं उनकी चिन्स तक, और अल्लाह ताला ने उनके सरों को इन मेटल कॉलर्स की वजह से फोर्स करके ऊपर उठाया हुआ है। ये उनके हक के इनकार की सजा नंबर एक है, सजा दी है अल्लाह ने। ये कॉन्सेप्ट आप देखें, गले में कॉलर हो गर्दन में, और कॉलर इतना बड़ा हो कि कॉलर बोन से लेकर चिन तक आपको बिल्कुल पैक कर दे और आपका सर रेज हो जाए फोर्सफुली। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके जहन में किसकी तस्वीर आती है? कैदी की, प्रिजनर, और आम कैदी नहीं, कुछ खास कैदी होते हैं, कुछ खास प्रिजनर्स होते हैं जिनको सेपरेट सेंटेंस करके रखा जाता है, सेपरेट चैम्बर्स में रखा जाता है, और जब उनको बाहर निकाला जाता है तो उनको इस तरह से कॉलर पहना के, और कॉलर के साथ मोर ओवर उनके दोनों हाथों को चेन्स के साथ इसी जगह बांधा हुआ होता है उनकी गर्दनों के साथ, ताकि बिल्कुल वो सीधा चलते रहें और उनको आसपास कुछ नजर नहीं आता कि उनके आसपास क्या है। सो एक कॉन्सेप्ट है यहां पर हक का इनकार करने वाले के लिए, जिसको अल्लाह ताला ने उसकी गर्दन के साथ रेज्ड हेड के साथ फिक्स्ड कर दिया है, और सामने रसूल होते हुए भी سامنے صراط مستقیم ہوتے ہوئے بھی اس کو توفیق نہیں مل رہی کہ وہ اللہ کے پیغام پر لبیک کہے اور رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لے. ایک قیدی کی امیجری ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پر امیج دیا ہے. اب یہ جو امیج یہاں پر آیا ہے, ابھی پیچھے ہم نے ابو جہل کی مثال دیکھی تھی اور آپ کو میں نے اسباب النزول میں بتایا تھا کہ اس سورت کے شان نزول میں ابو جہل سے متعلق واقعات آتے ہیں. کیا ابو جہل کی گردن میں فزیکلی کسی کو یہ کالر نظر آتا تھا؟ انویزیبل تھا. اس کے کردار اور اس کے معاملات اور اس کی باڈی لینگویج سے واضح ہوتا تھا. آج بھی جو گناہ کرے, آج بھی جو حق کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرے, اس کے لیے یہی میٹافور ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں توک ڈال دیا ہے. جو قیدی ہوتے ہیں کیا وہ باہر کی دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ قیدی کو نہیں پتا ہوتا باہر حالات کیا چل رہے ہیں, وہ کلولیس ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس باہر کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے تکبر کی وجہ سے حق کی بات نہیں مانی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی ایسی اپوائنٹ کی جو کہ ان کے جرم سے میچ کر رہی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے لا پڑھا ہے, سو قانون کی زبان میں قانون کا اصول یہ ہوتا ہے, پنشمنٹ شوڈ فٹ دا کرائم. پڑھا ہے کسی نے؟ سزا ایسی ہونی چاہیے جو اس کے جرم کے مطابق ہو. وہ انسان جس نے سینے میں دل میں حق کو پہچانا لیکن وہ آواز حلق سے باہر نہیں آ سکی, اللہ نے ان کے حلق کو کیپچر کرنے کا, اللہ نے ان کی گردنوں میں توک ڈالنے کا امیجری میٹافور سزا کے طور پر یہاں پر دیا ہے. زندہ ہیں بٹ دیکھ نہیں سکتے, سامنے موجود ہیں بٹ پہچان نہیں سکتے, سب سنتے ہیں کانوں سے لیکن اب وہ جو درمیان میں بیریئر آ گیا ہے تکبر کا, اس کی وجہ سے اب بات مزید دل میں نہیں جاتی, یا جو دل کی بات تھی وہ دماغ اور انٹلیکٹ سے میچ نہیں کر پاتی. یہ ہے انسان کے تکبر کا انداز. اور تکبر کے انداز میں ہی اگر آپ کسی کو ذہن میں لے کر آئیں جس کی گردن میں کالر ہے, جس کی گردن میں کالر ہو وہ رائٹ اور لیفٹ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی پہنا ہو تو آپ کو انداز ہو, اگر آپ کی گردن میں کالر ہو تو آپ جھک کے اپنے پاؤں آرام سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو امیجری دی ہے, جس نے تکبر کے ساتھ حق کا انکار کیا, جو قرآن کو صرف ایک انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے سنتا رہا, عمل کی طرف نہیں دوڑا, اس نے آرٹیکولیٹ نہیں کیا حق کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیکلی اس کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. اللہ کو اس نے اگنور کیا تھا بائی چوائس, اب وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا, جس کو قرآن کہتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی فسق کا شکار ہونے والے لوگ ہیں. جو اللہ سے غافل ہوگا, جو حق کا انکار کرے گا, اللہ اس کو اس کی اپنی ریالٹی سے دور کر دے گا. پھر یہاں آیا فَهُمْ مُقْمَحُونَ, تو وہ بالکل اس طرح سے فورسڈ ہیں کہ وہ آس پاس دیکھ نہیں پاتے, اور ایک دوسرے سے, مُقْمَحُونَ کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے قیدیوں کو لائن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے, جبکہ قیدی رائٹ لیفٹ دیکھ نہیں سکتا, اس کے رائٹ لیفٹ جو ہیں اور قیدی کھڑے کر دیے جائیں اور ان کو باندھ دیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ. سو اب وہ فورسفل ہیں کہ وہ اپنے سامنے چیز کو ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکیں گے. اللہ نے پہلے دل پر مہر نہیں لگائی. یہ گردن میں توک آ جانا یہ دل پر مہر لگنے کی علامت ہے, لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا پہلا عمل نہیں ہوتا. اللہ مہر لگا کر کسی کو پیدا نہیں کرتا. اللہ حق کو سمجھنے کے موقع دیتا ہے, اور جب حق کے موقع سامنے آئیں پھر بھی انسان انکار کرتا رہے, پھر بھی انسان عمل پر نہ آئے, تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور یہ کالر بون گلے پر آ جانا, یہ کالر کا گلے پر آ جانا, یہ ایک اسی کیفیت کا ذکر ہے کہ جہاں پر دل پر مہر لگ جائے. مقمحون کا جو لفظ آیا ہے قاف میم ہا سے ہے. اقمحل بعیر کہتے ہیں, دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. اقمحل بعیر, بعیر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو, عربی زبان میں. اقمحل بعیر کہتے ہیں, یا تو جب اونٹ تالاب سے پانی پیتا ہے, سو پانی پینے کے بعد وہ اپنی گردن کو آسمان کی طرف کرتا ہے, اوپر اٹھاتا ہے اپنی گردن, اور اس کے بعد اپنے منہ کو آسمان کی طرف کرتا ہے تاکہ پانی پورا جو ہے وہ اس کا اندر جا کے اسٹمک میں سٹور ہو جائے. ایک اس کو کہتے ہیں اقمحل بعیر. और एक कहते हैं जब कोई राइडर जो कि ऊंट पर बैठा हुआ है वो ऊंट को रोकने के लिए उसकी रस्सी को खींचे, और जब उसकी रस्सी को वो खींचता है तो ऊंट का मुंह ऊपर आसमान की तरफ जाता है। ये वो कैफियत है जिससे पता चलता है कि इट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ एरोगेंस। ऊंट के अंदर आपको मालूम है तमकनत होती है, ऊंट की जो नेचर है, जैसे जानवरों के अंदर मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, जो आपके घरों में डोमेस्टिक कैट्स होती हैं या जो आप बिल्ली पालते हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल अफिलिएशन रखी है इंसानों के साथ, मोहब्बत का एंगल। इसी तरह से आप देखती हैं कि अल्लाह ताला ने खिंजीर को हराम किया इसलिए कि खिंजीर के अंदर एक नेचुरल चीज है, पिक के अंदर एक नेचुरल एलिमेंट है बेहयाई का, या गंद के अंदर मुंह डालने का। सो अल्लाह ताला ने हर जानवर के अंदर एक डोमिनेटिंग करेक्टरिस्टिक रखा है। ऊंट का डोमिनेटिंग करेक्टरिस्टिक उसकी एरोगेंस है, तमकनत है। ऊंट के लिए आता है कि अगर ऊंट के साथ किसी की दुश्मनी हो जाए, चाहे वो इंसान की हो, ऊंट ढूंढ कर उसको मार देता है। अगर आपने इसके ऊपर स्टडी करना चाहें तो जरा ऊंटों की जिंदगियों के ऊपर स्टडी कीजिए। ऊंट के अंदर दिल, ऊंट के दिल में कीना और ग्रज आ जाता है बहुत ज्यादा। अगर कोई मालिक उसके साथ जुल्म करे तो वो मालिक से बदला जरूर लेता है। इसी तरह घोड़े के अंदर क्या चीज है प्रोमिनेंटली? वफादारी। घोड़ा और इसी तरह से कुत्ता, कुत्ता और घोड़ा, इनके अंदर अल्लाह ताला ने लॉयल्टी बहुत ज्यादा रखी है। सो यहां जो मिसाल आई मुकमाहून, अल्लाह ताला ने हक का इनकार करने वाले की सिफत को ऊंट से टैली किया है। जैसे ऊंट तमकिनत का, किबर का, तकबर का शिकार होता है, ऐसे का इनकार करने वाला तकबर और एरोगेंस में अल्लाह की बात नहीं मान पाता। सीधा ब्लैक एंड व्हाइट हक सामने आने के बाद भी वो उस हक से अपने आप को दूर रखे रहता है। यह है गुमराही की अलामत, और ये अल्लाह ताला ने एक सजा मेंशन की है कि अल्लाह ने उसकी गर्दन को फिक्स कर दिया आसमान की तरफ। बाकी लोग कीड़े मकोड़े लगते हैं। जो मगरूर इंसान होता है उसका गुरूर सिर्फ अपने जैसे इंसानों के साथ नहीं होता। मुफस्सरीन ने इस आयत से तीन ओपिनियंस लिए हैं। इनकार करने वाले के अंदर तकब्बुर किस किस एंगल से आता है? नंबर एक, उसके अंदर अल्लाह आखरत से और तौहीद से बात को समझना उससे उसको महरूम कर देता है उसके तकब्बुर की वजह से। वो जो मैंने आपको गफलत में डेफिनेशन बताई थी, अपने तकब्बुर के बबल में बंद, यहां पर भी उसकी सजा का ये इम्पैक्ट आता है। दूसरा क्या होता है, अपने आप को हर एक से बेहतर समझता है, आई एम द बेस्ट। कुछ लोग किसी महफिल में दाखिल होते हैं तो ऐसे नहीं कहते ओ हेलो हे यू आर, वो कहते हैं ओ हेलो हेयर आई एम, आई मी एंड माई सेल्फ। बस अपनी ही जात को हर वक्त हाईलाइट करने वाले। और तीसरा मफहूम इसके अंदर आता है कि जिससे पता चलता है कि इंसान जब तकब्बुर का शिकार होता है तो हक के रास्ते पर चलने वालों का दुश्मन बन जाता है, जैसे अबू जहल। और वो वाकया जो मैंने आपको बताया था शाने नजूल में, कि अबू जहल ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करने के लिए बोल्डर उठाया था, रॉक उठाई थी, तो उसके हाथों को अल्लाह ताला ने, जैसे ही उसने पत्थर ऊपर उठाया तो अल्लाह ने उसके हाथों को उसकी गर्दन तक आते आते ही रोक दिया था। इसी आयत के रेफरेंस में कहा जाता है कि उसके इस अमल के ऊपर आयत नंबर 8 ये वाली नाजिल हुई थी कि अल्लाह ने उसकी गर्दन में जैसे तौक डाल दिया हो, और वो बोल्डर आकर उसके अपने पैरों पर गिर गया था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सका। सो अल्लाह ताला ने एक सजा का जिक्र किया आयत नंबर 7 के अंदर। आगे आयत नंबर 8, अब कौन सी आयत है ये, आयत नंबर 9। आगे आयत नंबर 9 आ रही है, दूसरी सजा इसके अंदर आ रही है। एक सजा क्या है, तकब्बुर की वजह से सीधा रास्ता सामने होने के बावजूद नजर नहीं आता। तकब्बुर की वजह से अपनी जात सबसे बेहतर लगती है, तकब्बुर की वजह से आखिरत से पर्दा गुम हो जाता है। और अभी मजीद सजा आगे बताई आयत नंबर 9 में, वाजा अल्ना मिन बैनी अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने क्या बना दिया, हमने उनके आगे एक दीवार खड़ी कर दी, हमने उनके पीछे एक दीवार खड़ी कर दी, फअग्शयनाहुम, तो हमने उनको उनके अमल की वजह से, ये फा ये बता रहा है कि फा सबबिया है, उनके अमल की वजह से, फाअगशई ना हुम, हमने उनको कवर कर दिया, फाहुम ला युबसिरून, तो अब वो देख नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इस आयत में एक ऐसे इंसान की पिक्चर दी जो ऑलरेडी कैदी है, पिछली आयत वाली सजा याद है, उसके गले में कॉलर है, उसके अपने हाथ उसके गले से चेन से बंधे हुए हैं, चिन अप, हेड रेस्ड फोर्सफुली, और इस सिचुएशन में अल्लाह कह रहा है कि हमने उसके ऊपर तीन मजीद बैरियर डाल दिए हैं। एक बैरियर उनके सामने है, एक बैरियर उनके पीछे है, और एक कवर उनके सरों के ऊपर है। क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, साइड्स क्यों नहीं है? फ्रंट है, बैक है और टॉप है, साइड्स क्यों खाली है? इसलिए कि कॉलर है गले में, तो साइड पे तो देख ही नहीं सकता ऑलरेडी, सही। सो अल्लाह ताला की हर आयत वेल कनेक्टेड है। जब पिछली आयत में बताया था कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह ताला उसके गले में तोक डाल देता है, अब उसको सिर्फ अपना आप नजर आता है, साइड्स को तो देखता ही नहीं है, बाकी तो कीड़े मकौड़े वो देखेगा ही नहीं कि उसके राइट और लेफ्ट कौन है। अल्लाह ने एडिशनली इस अमल की वजह से उसके ऊपर तीन ब्लॉक्स डाल दिए हैं। ये जो यहां लफ्ज आया है सद्दन, सद्दन कहते हैं दीवार को। दीवार के दो मकसद हो सकते हैं, एक जब दीवार होगी, दीवार सद्दन बैरियर दीवार, तो इसका मतलब है आप एस्केप नहीं कर सकते। दीवार है आपके सामने, आप उस दीवार को क्रॉस करके जा नहीं सकते। दूसरा जो बैरियर की वजह बनती है, यू कैन नॉट सी बियॉन्ड द वॉल, आपको नहीं पता दीवार के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। सब ये एक ऐसा इंसान है जिसका विजन ब्लॉक्ड हो गया है, जिसको चीज नजर नहीं आ रही। और ये जो तीन अल्लाह ताला ने यहां पर बैरियर्स बयान किए हैं, इनकी बहुत खूबसूरत एनालॉजी आपको बहुत आसानी से समझ आ सकती है। पहला बैरियर, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन, हमने उनके सामने दीवार खड़ी कर दी। ये बताएं इंसान के सामने क्या होता है? सामने फ्यूचर भी हो सकता है, और फ्यूचर तो इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, अपनी अपनी जिंदगी को इमेजिन कीजिए, आपके सामने क्या है? आपकी पूरी दुनिया की जिंदगी, आपकी नेमतें, आपकी वार्डरोब, आपका रियल इस्टेट, आपके बच्चे, आपकी फ्रेंड्स, आपका घर, आपके रिश्तेदार, आपका खाना पीना उठना बैठना, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। अल्लाह ने कहा वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन, हमने उनके सामने दीवार खड़ी कर दी। इंसान अगर अपने आसपास एक हकीकत को देखना चाहे, अगर अपनी नेमतों पर ऑब्जर्व करे, तो इंसान अपनी नेमतों को देखकर अल्लाह तक पहुंच सकता है। कुरान में आता है फलयंदुरिल इंसानु इला तआमी, इतनी छोटी सी मिसाल अल्लाह ने दी है, इंसान को चाहिए अपने खाने को देखे। क्या होगा खाने को देखने से? बच्चे कहेंगे ओहो फिर अम्मा ने सब्जी बना दी। हाँ, क्यों कहा अल्लाह ने फलयंदुरिल इंसानु इला तआमी, क्यों देखे इंसान अपने खाने को? अ वेरी वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, आपके सामने जो प्लेट में खाना रखा है, आपके सामने, चले प्लेट का खाना तो बहुत बड़ा है, आपके सामने जो चाय का कप रखा है, आप कभी ऑब्जर्व करें ये प्लेट का खाना या ये चाय का कप कितने मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ आपके सामने इस वक्त डाइनिंग टेबल पर है, सफर करता हुआ आपके पास पहुंचा है। सो हर इंसान की जिंदगी में एक सफर है। अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास की नेमतों को देखकर, अपने सामने मौजूद चीजों को देखकर अपने सफर को भी किसी तरह से पहचान सकते हैं। आपका और मेरा सफर शुरू हुआ था, जिसको आप कॉन्शियस सफर कह सकते हैं। जिंदगी तो शुरू हुई थी, रूहानी जिंदगी, तब से जब से अल्लाह ताला ने रूहें बनाई। जितनी बूढ़ी आदम अलैहि सलाम की रूह है, उतनी बूढ़ी आपकी और मेरी रूह है, मालूम है ये बात? हाँ, एक साथ ही बने थे हम सब, आदम अलैहि सलाम के साथ ही तमाम इंसानों को बनाया गया था। और वो जो आजकल अम्माएं कहती हैं बड़ी बूढ़ी रूह है इसके अंदर, सो ऑब्वियसली बूढ़ी रूह तो है, हम सबकी रूहें बूढ़ी हैं उस हिसाब से, तो आदम अलैहि सलाम के बराबर की तो रूह है हमारी, एक ही तो उम्र की रूहें हैं। मगर याद रखे, एक रूहानी सफर वहां से शुरू हुआ था, लेकिन दुनियावी सफर माँ के वूम्ब से शुरू हुआ था। और फिर जब अल्लाह ताला ने मैच्योरिटी दी, अकल दी, कॉन्शियस लेवल दिया, दुनिया को इन्फर करना सिखाया, तो एक और सफर वहां से शुरू हो गया। अब इंसान का काम है कि अपने सामने की जिंदगी को ऑब्जर्व करे और इससे रिमाइंडर ले। अल्लाह ने कहा है ना, इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहारी लआयातिन लि उलिल अल्बाब। ये दिनों का आना जाना, ये रात और दिन का बदलना, सुबह शाम का होना, इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम पीपल ऑफ इंटेलेक्ट हो, अगर तुम सोच सकते हो, अगर तुम अकल से काम लेते हो। सो अल्लाह ने आपकी और मेरे सामने दुनिया रखी है, लेकिन जो हक को देखने के बावजूद इनकार कर दे, तकब्बुर का शिकार हो जाए, उसके सामने दुनिया की नेमतें होती हैं, उसको उन नेमतों से अल्लाह याद नहीं आता। उसके सामने माल होता है, औलाद होती है, कंफर्टेबल घर होता है, बहुत सी आसाइशें और लग्जरीज होती हैं, उसको नहीं याद आता तो अल्लाह याद नहीं आता। हर चीज को देख रहा होता है, जरूरी नहीं है आंखों का अंधा हो, आंखों वाला होता है। और याद रखें, जिसको दुनिया में अल्लाह ने नेमतें दी, जिसको अल्लाह ने दुनिया में कॉन्शियस लेवल दिया, अकल दी, और उसको अल्लाह ने शऊर दिया कि वो अपने उस शऊर को इस्तेमाल करके अल्लाह तक पहुंच जाए, आंखें दी अल्लाह ने, लेकिन उसने अपने आप को अल्लाह को ढूंढने में इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएगा। कुरान की आयात दलील है। वो पूछेगा, अल्लाह आपने मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा, जब मैंने आंखें दी थी दुनिया में आयात को देख कर और पहचान कर मुझ तक पहुंचने के लिए, तो तुमने अपनी बसारत को मुझ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो इसलिए आया वाजा अल्लाह मिम्बई ने आई दी हिम सद्दन, अल्लाह ने उनके सामने ब्लॉक कर दिया, बैरियर लगा दिया। आयात, ये नेमतें, ये आपका और मेरा जिंदा होना, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये रिश्ते, ये आयात हैं। दीज आर नॉट माई मंजिल। आपको कहा जाए आपने नजीहा के घर आना है तो सेकेंड नॉर्थ स्ट्रीट से टर्न कीजिएगा। आप आए और आप ब्लू कलर का सेकेंड नॉर्थ स्ट्रीट का बोर्ड देखें, आप कहें आहा मुझे बोर्ड नजर आ गया, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगी। इट वॉज अ साइन, वो तो डायरेक्शन दे रहा था आपको। इट वॉज अ मीडियम टू रीच टू द प्लेस, टू द डेस्टिनेशन। आप उस बोर्ड पे ही रुक गई। नेमत एक साइन था, नेमत एक बोर्ड था जिससे डायरेक्शन लेके आपको टर्न करना था। मेरी आंखें मुझे अल्लाह तक पहुंचाएं, मेरे कान मुझे अल्लाह तक पहुंचाएं, मेरा स्टेमिना मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, ये जो खाना मैं खाती हूं ये मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, ये जो एनर्जी मैं गेन कर रही हूं ये मुझे अल्लाह की मारिफत दे, ये जो मैं स्कूल कॉलेज में डिग्रीज लेकर, ग्रेड्स लेकर, बेहतरीन रिजल्ट लाकर, बेहतरीन करियर अडॉप्ट कर रही हूं ये मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। ये मकसद था आयात का। लेकिन जिन्होंने मुसलमान होते हुए या जिन्होंने कुरैश में से हक को पहचानने के बावजूद तकब्बुर करते हुए हक का इनकार किया, उनके सामने अल्लाह ने बैरियर खड़ा कर दिया, वर्चुअल बैरियर। बेअमल मुसलमानों के सामने कोई दीवार नहीं खड़ी होती, बिल्कुल जैसे अबू जहल के गर्दन में कोई कॉलर नजर नहीं आता था। इसी तरह से आज मुसलमान बेअमल हैं, उनके सामने एक वर्चुअल बैरियर मौजूद है जो उनको नजर नहीं आता, लेकिन वो इस गलती का शिकार हो चुके हैं। सो अल्लाह ने उनके सामने उनको एक वॉल दे दी है, जिसको आप कह सकते हैं इट्स अ वॉल ऑफ क्रिएशन। दुनिया में ही खोकर रह गए, दुनिया की मोहब्बत का दीवाना हो गए। अल्लाह ने औलाद दी थी अपने लिए सदका जारिया बनाने के लिए, हमने उनको सजाने सवारने में ही सारा वक्त लगा दिया, हमने उनकी ख्वाहिशात पूरी करने में ही सारा वक्त गवा दिया, हमने उनकी दुनिया बनाने में ही सारा वक्त लगा दिया, और ये भूल गए कि अल्लाह ने औलाद क्यों दी थी। अपने पीछे कलमा गो छोड़ कर जाना, अपने पीछे इस्लाम का अलम बरदार छोड़ कर जाना, अपने पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी को अमल में लाने वाला छोड़ कर जाना। जिस काम के लिए नेमत मिली थी हम भूल गए। अल्लाह ने अकल दी थी इस्लाम और कुरान को पहचान कर दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हमने अकल इस्तेमाल की इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की दुश्मनी में, अहकामात को जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आज इस पर अमल किया जा सके। सो अल्लाह ने उनके सामने दीवार खड़ी कर दी। सेकंड ब्लॉक क्या है? سیکنڈ بلاک اللہ نے کہا کہ وہ ہے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی. اب جا کے سوچ کر آئیے گا کہ پیچھے کون سی دیوار ہے. آگے کا ایک بیریئر ہم نے دیکھ لیا. اس آیت نمبر 9 کے دو بیریئرز انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، اللہ ہمیں جو حق نظر آ رہا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز ضروریات اور دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. اللہ ہم سے ہمارا یہاں آنا اور صرف اخلاص اور خلوص کے لیے، اللہ کے علم کے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہترین رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.